ये सोचने वाली बात है कि जब कोई गंभीर अपराध होता है तो आजकल मतलब आधुनिक युग में क्राइम सीन की जांच किस तरह से की जाती है। डीएनए जांच होती है, फिंगरप्रिंट्स की बारीक पड़ताल होती है।
बिल्कुल, और कैमरों की, सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक विज्ञान, मतलब हर एक छोटी चीज का सहारा लिया जाता है।
हाँ, सब कुछ एकदम सटीक होता है। अगर एक भी सबूत मिल गया ना तो पूरा घटनाक्रम शीशे की तरह साफ हो जाता है।
सही बात है, आज की तकनीक ही ऐसी है।
लेकिन जरा इस स्थिति को एक अलग नजरिए से देखा जाए। मान लिया जाए कि ये जो अपराध स्थल है ये आज का नहीं बल्कि कोई 3000 साल पुराना है।
अरे बाप रे, 3000 साल?
हाँ, और इन 3000 सालों में हजारों बार बारिश ने सारे निशान धो दिए हैं, तूफानी हवाओं ने मिट्टी की कई मीटर मोटी परतें बिछा दी हैं।
और इतना ही नहीं, जिन पत्थरों पर सबसे अहम सुराग हो सकते थे उन्हें कोई और इंसान निकालकर अपना घर बनाने के लिए बहुत पहले ही ले गया होगा।
बिल्कुल, अब उस जगह पर, उस पुराने क्राइम सीन पर सिर्फ एक टूटा हुआ आधा गला हुआ मिट्टी का बर्तन बचा है।
सिर्फ एक बर्तन का टुकड़ा?
हाँ, तो क्या महज उस एक टुकड़े के सहारे पूरी कहानी, पूरा इतिहास और उस समय का सच हूबहू बताया जा सकता है?
ये तो बहुत ही मुश्किल है, बल्कि लगभग नामुमकिन है।
और यही बात है, जब प्राचीन इतिहास और विशेष रूप से ऐतिहासिक ग्रंथों की, जैसे कि बाइबल के इतिहास की बात आती है, तो जमीन पर असल परिदृश्य कुछ ऐसा ही होता है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं।
हाँ, ये अपराध स्थल वाला उदाहरण स्थिति की गंभीरता को बहुत ही सटीक ढंग से पेश करता है।
आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का आधार डॉक्टर रॉबर्ट वैनोए का एक बहुत ही शानदार लेक्चर है। ये उनके ओल्ड टेस्टामेंट इतिहास पर दिए गए व्याख्यान का 18वां भाग है।
जी, और इस पूरी चर्चा का मुख्य विषय है पुरातत्व विज्ञान यानी आर्कियोलॉजी और ऐतिहासिक ग्रंथों के बीच का संबंध।
बिल्कुल, और डॉक्टर वोनोए का ये लेक्चर मुख्य रूप से उत्पत्ति मतलब जेनेसिस के 12वें अध्याय यानी इब्राहिम के समय पर केंद्रित है, क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यहीं से हमें ऐसे बाहरी और ठोस सुराग मिलने शुरू होते हैं जिन्हें हम ऐतिहासिक ग्रंथों के साथ जोड़कर परख सकते हैं।
और इस चर्चा का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है ना, वो है एक आलोचनात्मक संतुलन यानी एक क्रिटिकल बैलेंस खोजना।
क्रिटिकल बैलेंस मतलब हम किस तरह के संतुलन की बात कर रहे हैं? हाँ,
होता क्या है कि जब भी प्राचीन इतिहास की कोई उलझन या विवाद सामने आता है तो समाज सीधे पुरातत्व विलों की तरफ देखने लगता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि चलो खुदाई करने वालों से ही पूछ लेते हैं कि जमीन के नीचे क्या सच दबा है।
हाँ, मानो उनके पास कोई जादुई छड़ी हो जो हर विवाद को तुरंत खत्म कर देगी।
बिल्कुल, एक तरफ कुछ अत्यंत संशयवादी आलोचक होते हैं, उनका दावा होता है कि अगर किसी घटना या व्यक्ति का खुदाई में कोई सबूत नहीं मिला तो इसका सीधा मतलब है कि ऐतिहासिक ग्रंथ पूरी तरह से मनगढ़ंत और गलत है।
मतलब सबूत नहीं मिला तो बात झूठी है।
हाँ, और वहीं दूसरी तरफ कुछ बेहद रूढ़िवादी विचारधारा वाले लोग होते हैं, वो खुदाई से निकले हर छोटे से पत्थर या मिट्टी के टुकड़े को अपने धार्मिक या ऐतिहासिक विश्वास की अंतिम मोहर मान लेते हैं।
हाँ, लेकिन विज्ञान, पुरातत्व और इतिहास का रिश्ता इतना सीधा और सरल बिल्कुल नहीं है, है ना?
एकदम सही, और यही इस पूरी चर्चा का मुख्य उद्देश्य है। हमें ये समझना होगा कि जमीन के नीचे से निकलने वाला सच पूरी तरह से मुकम्मल सच नहीं होता। इतिहास के जो टुकड़े आज हमारे पास मौजूद हैं, वे पूरी तस्वीर का एक बहुत ही छोटा और धुंधला हिस्सा है।
इसी बात पर एडविन यामाओची नाम के एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं जिनका जिक्र इस लेक्चर में प्रमुखता से किया गया है। उनके विचार इस बात को बहुत गहराई से समझाते हैं।
एडविन यामाओची ने जो तथ्य रखे हैं वे वास्तव में आंखें खोलने वाले हैं। हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि जो कुछ भी अतीत में लिखा गया, पढ़ा गया या बनाया गया वो आज तक किसी न किसी रूप में सुरक्षित होगा,
लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। समय एक बहुत ही क्रूर साथी है।
बहुत क्रूर। प्राचीन काल में विशेष रूप से मिस्र और उसके आसपास के इलाकों में लिखने के लिए पेपायरस जैसी नाजुक सामग्रियों का इस्तेमाल होता था। ये नरकट के पौधों से बना कागज जैसा ही एक पदार्थ होता था।
हाँ, मिस्र की सूखी रेत में तो ये फिर भी कुछ हद तक बच गया,
लेकिन फिलिस्तीन और अन्य इलाकों में जहाँ नमी होती है वहाँ ये पेपायरस नमी और फफून के कारण गलकर पूरी तरह से खत्म हो गया। आज के समय में हमारे पास जो भौतिक चीजें बची हैं वे अमूमन केवल पत्थर, पकाई गई मिट्टी या कुछ विशेष धातुएं ही होती हैं।
लेकिन पत्थरों का भी क्या भरोसा किया जाए? इंसान खुद ही अपने इतिहास को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ता।
बिल्कुल, लेक्चर में ये सुनकर बहुत हैरानी हुई कि प्राचीन काल में ये एक बेहद आम बात थी कि लोग पुरानी खंडर हो चुकी इमारत को गिरा देते थे
और फिर उसके तराशे हुए पत्थरों और ईंटों का इस्तेमाल अपनी नई इमारत बनाने में कर लेते थे।
हाँ, इसे आसान भाषा में हम पत्थरों की रिसाइकलिंग कह सकते हैं, यानी जो इमारत कभी किसी महान सभ्यता का गौरव रही होगी वो किसी और के घर या किले की नींव में दब गई, उसका नामो निशान तक हमेशा के लिए मिट गया।
ये तो बहुत ही निराशाजनक है, मतलब जो सुराग बच भी सकते थे उन्हें इंसान ने खुद ही गायब कर दिया।
एकदम सही, और इसका सबसे बड़ा और प्रामाणिक उदाहरण हमें न्यू टेस्टमेंट यानी ईसा मसीह के दौर के इतिहास में देखने को मिलता है।
अच्छा, वहाँ क्या हुआ था?
पहली सदी के ऐतिहासिक दस्तावेजों में ये स्पष्ट रूप से दर्ज है कि 70 ईस्वी से पहले पूरे फिलिस्तीन में सैकड़ों यहूदी प्रार्थना स्थल मौजूद थे। इन्हें सिनेगॉग कहा जाता था।
सैकड़ों सिनेगॉग? तो इतने दशकों की आधुनिक खुदाई के बाद पुरातत्वविदों को उस दौर के कितने सिनेगॉग मिले होंगे?
आप ही सोचिए, सिर्फ एक। जी हाँ, केवल कपरनहूम का सिनेगॉग, बाकी के सैकड़ों प्रार्थना स्थलों का कोई भौतिक सुराग नहीं है।
अरे बाप रे, सिर्फ एक, बाकी सब कहाँ गए?
या तो उन्हें रोमनों ने पूरी तरह नष्ट कर दिया, या फिर बाद की पीढ़ियों ने उन्हीं पत्थरों को उखाड़कर वहाँ अपने नए प्रार्थना स्थल बना लिए।
ये तो कुछ ऐसा है जैसे कोई 1000 टुकड़ों वाला जिग्सॉ पजल हल करने बैठा हो। लेकिन जब डिब्बा खोला तो उसमें केवल 3 ही टुकड़े बचे थे, बाकी के 997 टुकड़े हमेशा के लिए खो चुके हैं।
बिल्कुल सटीक एनालॉजी है ये।
और अब कोई ये उम्मीद करे कि इन्हीं 3 बचे हुए टुकड़ों को देखकर पूरी तस्वीर की एकदम सटीक व्याख्या कर दी जाए, ये कैसे मुमकिन है?
ये जिग्सॉ पजल वाली उपमा स्थिति को एकदम स्पष्ट कर देती है। एक और ऐतिहासिक उदाहरण इस बात को पुख्ता करता है। मोआब के राजा मेशा का एक पूरा पत्थर का शिलालेख तो हमें मिल गया है। ये आज पेरिस के लोवर म्यूजियम में सुरक्षित रखा है और इसमें उसकी जीतों का जिक्र है।
हाँ, मेशा का पत्थर तो काफी प्रसिद्ध है।
लेकिन अगर हम उसी दौर के इसराइल और यहूदा के राजाओं की बात करें जो बहुत शक्तिशाली थे, तो उनके ऐसे किसी भी शिलालेख का आज तक सिर्फ एक शब्द वाला छोटा सा टुकड़ा ही मिल पाया है।
क्या बात कर रहे हैं, इतने महान राजाओं का लंबा चौड़ा इतिहास और सबूत के नाम पे सिर्फ एक शब्द।
हाँ, सिर्फ एक शब्द। ये इस बात का प्रमाण है कि अतीत का कितना बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा हमेशा के लिए खो चुका है, जिसे कोई भी तकनीक वापस नहीं ला सकती।
एक मिनट रुकिए, यहाँ पर एक बहुत ही लाजमी सवाल उठता है। अगर समय ने और इंसानों ने इतने सारे सुराग मिटा दिए हैं, तो क्या हमने बची हुई हर जगह को अच्छे से छान नहीं लिया है?
मतलब आप किस तरह से छानने की बात कर रही हैं?
मेरा मतलब है, आज हम 21वीं सदी में हैं, हमारे पास ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार हैं, अंतरिक्ष से जमीन के भीतर देखने वाले सैटेलाइट हैं, लेजर मैपिंग है।
हाँ, तकनीक तो बहुत एडवांस हो गई है।
तो क्या हम इन तकनीकों का इस्तेमाल करके बिना खोदे ये नहीं जान सकते कि नीचे क्या है? पुरातत्वविदों की खुदाई की ये प्रक्रिया इतनी धीमी क्यों है?
यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हमारे पास जितनी भी आधुनिक तकनीक हो, जमीन के नीचे खुदाई करना आज भी सुई के पहाड़ में सुई ढूंढने जैसा ही है।
अच्छा, ऐसा क्यों?
ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार या सैटेलाइट ये तो बता सकते हैं कि जमीन के नीचे कोई असामान्य ढांचा या कोई रुकावट है, लेकिन वो ढांचा क्या है, कोई ऐतिहासिक महल है, कोई आम दीवार है, या महज एक बड़ी चट्टान है, ये जानने के लिए आज भी इंसान को अपने हाथों से ब्रश और छोटे औजारों के साथ मिट्टी हटानी पड़ती है।
मतलब मशीनें सिर्फ इशारा कर सकती हैं, असली काम तो हाथ से ही करना होगा।
बिल्कुल, डॉक्टर वेनॉय ने अपने लेक्चर में कुछ बहुत ही दिलचस्प आंकड़े दिए हैं। 1944 में फिलिस्तीन में लगभग 3000 ऐसी जगहों या साइट्स थीं जिन्हें पुरातात्विक महत्व का माना गया था।
3000 जगहें, ये तो काफी बड़ा नंबर है।
हाँ, लेकिन 1963 में नेल्सन ग्लुएक नाम के एक विशेषज्ञ के सर्वेक्षण के बाद ये संख्या बढ़कर 5000 हो गई। हकीकत यह है कि हर बार जब कोई नया सर्वे होता है, जैसे गोलन हाइट्स या जूडिया के इलाकों में, तो अचानक से 20-30% नई ऐतिहासिक साइट्स मिल जाती हैं।
मतलब जमीन के नीचे अभी भी अनगिनत प्राचीन शहर और बस्तियां दबी पड़ी हैं, लेकिन 5000 साइट्स का आंकड़ा तो बहुत बड़ा है। क्या इन सब पर खुदाई का काम पूरा हो चुका है?
बिल्कुल नहीं, और यहीं पर असली निराशा होती है। इन 5000 साइट्स में से केवल 150 पर ही वैज्ञानिक तरीके से कोई खुदाई हो पाई है।
सिर्फ 150 5000 में से?
जी हाँ, और अगर हम प्रमुख खुदाई की बात करें जहां बहुत गहराई, विस्तार और लंबे समय तक काम हुआ हो, तो ऐसी सिर्फ 26 साइट्स हैं, यानी कुल संभावित जगहों का महज आधा प्रतिशत।
ये आंकड़ा तो सच में हैरान करने वाला है, लेकिन चलिए मान लेते हैं कि जहां खुदाई हुई वहां तो हमने सब कुछ बहुत सलीके से और बिना किसी चूक के खोज निकाला होगा।
ऐसा लगता तो है, पर हकीकत कुछ और ही है।
जैसे मेगिडो शहर की खुदाई का मामला है, 1925 से 1934 के बीच यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने वहां बहुत भारी बजट और अत्यंत सावधानी के साथ खुदाई की थी। उनका इरादा पूरे टीले को परत दर परत छीलकर इतिहास का हर एक पन्ना बाहर निकालने का था। वहां तो कोई गलती नहीं हुई होगी।
मेगिडो का वो प्रोजेक्ट उस समय का सबसे महत्वाकांक्षी और वैज्ञानिक माना जाता था, लेकिन वहां भी एक ऐसी ऐतिहासिक चूक हो गई जो बताती है कि यह पूरी प्रक्रिया कितनी नाजुक है।
हाँ, और वो चूक ऐसी थी जिसे सुनकर किसी भी इतिहासकार को झटका लग जाए। इतनी सावधानी और करोड़ों के बजट के बावजूद प्राचीन और विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य गिलगमेश की क्यूनिफॉर्म लिपि वाली एक बेहद अहम मिट्टी की पट्टी मुख्य पुरातत्वविदों को मिली ही नहीं।
बिल्कुल, और ये पता है किसे मिली? वो अनमोल पट्टी वहां अपने जानवर चरा रहे आम चरवाहों को मिली,
और वो भी खुदाई से निकले कचरे और मलबे के ढेर में। हाँ, इसके पीछे का विज्ञान बहुत दिलचस्प है। दरअसल जब मिट्टी से सनी हुई कोई प्राचीन पट्टी जमीन से निकलती है तो वो बिल्कुल किसी आम पत्थर या मिट्टी के ढेले जैसी ही दिखती है।
तो विशेषज्ञों ने उसे पत्थर समझकर मलबे में फेंक दिया होगा।
बिल्कुल यही हुआ था। जब बारिश हुई और उस पट्टी पर से हजारों साल पुरानी मिट्टी धुली, तब जाकर उन चरवाहों को उस पर बने कील जैसे आकार के निशान दिखे। यानी सबसे आधुनिक खुदाई में इतिहास का सबसे बड़ा दस्तावेज कचरे में फेंक दिया गया था।
ये दिखाता है कि इंसान और मानवीय नजरों से गलतियां होती हैं।
हाँ, एक और बहुत बड़ा मामला हजोर शहर का है। जॉन गार्स्टैंग नाम के एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरातत्वविद ने वहां खुदाई की।
अच्छा, वहां क्या हुआ?
उन्होंने वहां बहुत ढूंढा, लेकिन उन्हें माइसेनियन पॉटरी यानी एक खास तरह के आयातित बर्तन नहीं मिले। अब पुरातत्व में इन बर्तनों को समय और व्यापार का सूचक माना जाता है। ये उस दौर के सबसे महंगे बर्तन थे, जैसे आज का कोई बहुत महंगा ब्रांड हो।
तो अगर किसी शहर में ये बर्तन मिलते तो माना जाता था कि वो शहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ा था और बहुत अमीर था।
बिल्कुल, लेकिन क्योंकि गार्स्टैंग को ये बर्तन नहीं मिले तो उन्होंने सीधा निष्कर्ष निकाल दिया कि हजोर कोई अहम शहर नहीं था, वहां कोई खास बस्ती नहीं थी, और जो बातें प्राचीन ग्रंथों में इसके महत्व के बारे में लिखी हैं वे सब गलत है।
लेकिन ये निष्कर्ष तो बहुत जल्दबाजी में निकाला गया था, है ना?
बहुत बड़ी जल्दबाजी में। बाद में यादीन नाम के एक और इसराइली पुरातत्वविद ने उसी हजोर में फिर से खुदाई शुरू की, और ये जानकर किसी को भी आश्चर्य होगा कि यादीन को वहां क्या मिला।
क्या मिला?
उन्हें वहां के प्राचीन फर्श उसी माइसिनियन पॉटरी से भरे हुए मिले। जो चीज पहले वाले विशेषज्ञ को नहीं मिली थी वो वहीं जमीन के नीचे थोड़े और अलग हिस्से में दबी थी।
कमाल है। जो नहीं मिला उसका मतलब ये नहीं कि वो था ही नहीं,
कि वो चीज कभी अस्तित्व में ही नहीं थी। हाजोर बहुत बड़ा शहर था, करीब 200 एकड़ में फैला हुआ। यादीन ने 4 साल तक 130 मजदूरों के साथ वहां लगातार काम किया, और इतनी मेहनत के बाद भी वे उस शहर का केवल 1/400 हिस्सा ही खोद पाए। उनका खुद का अनुमान था कि पूरे हाजोर को वैज्ञानिक तरीके से खोदने में 800 साल लगेंगे।
800 साल, ये तो बहुत ज्यादा है।
और अगर हम बेबीलोन जैसे विशाल प्राचीन शहर की बात करें तो उसे पूरी तरह खोदने में 8000 साल लग जाएंगे।
8000 साल, ये सुनकर तो लगता है कि इतिहास को पूरी तरह से जानना इंसानी सभ्यता के बस की बात ही नहीं है। खैर, एक पल के लिए ये भी मान लेते हैं कि खुदाई हो गई और कोई पुरानी लिपि या महत्वपूर्ण मूर्ति मिल भी गई, तो क्या वो सीधे अगले दिन दुनिया के सामने आ जाती है? मतलब क्या वो तुरंत इतिहास की किताबों में छप जाती है?
ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है जो आम तौर पर लोगों में होती है। खुदाई से चीजें बाहर आने और उनके पब्लिश होने यानी दुनिया के सामने आने के बीच एक बहुत बड़ा उबाऊ और अंधकारमय अंतराल होता है। इसे हम म्यूजियम का तहखाना कह सकते हैं।
म्यूजियम का तहखाना, ऐसा क्यों?
इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि क्यूनिफॉर्म जैसी लिपियों का अनुवाद करना कोई आसान काम नहीं है। ये किसी छपी हुई किताब को पढ़ने जैसा बिल्कुल नहीं है। ये मिट्टी के पट्टियों पर उभरे हुए 3D निशान होते हैं जो अक्सर टूट चुके होते हैं।
और उन्हें पढ़ना मुश्किल होता होगा।
बहुत मुश्किल। इन्हें पढ़ने के लिए एक खास कोण से रोशनी डालनी पड़ती है ताकि परछाई से निशान साफ दिखें। दुनिया में ऐसी मृत भाषाओं को पढ़ने वाले विशेषज्ञ उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, और ऊपर से इस काम के लिए फंड्स की हमेशा कमी रहती है।
हाँ, इसके उदाहरण तो और भी चौंकाने वाले हैं। लेक्चर में बताया गया है कि ब्रिटिश म्यूजियम को 1880 के दशक में बेबीलोन के राजाओं की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूची मिली थी, लेकिन क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि वो सूची दुनिया के सामने कब पब्लिश हुई?
शायद कुछ सालों बाद।
बिल्कुल नहीं, वो 1954 में पब्लिश हुई, यानी पूरे 75 साल तक वो अहम ऐतिहासिक सूची म्यूजियम की दराजों में धूल फांकती रही।
ये सच में हैरान करने वाला है। एक और उदाहरण है लिपिट इस्टर लॉ कोड। ये फिलाडेल्फिया के यूनिवर्सिटी म्यूजियम की अलमारियों में 60 से 70 सालों तक ऐसे ही पड़ा रहा।
60 से 70 साल?
हाँ, 1947 में फ्रांसिस आर स्टील नाम के एक विद्वान की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने उसे पहचाना और तब जाकर दुनिया को उस अहम कानून के बारे में पता चला।
सैमुअल क्रैमर का नाम भी आता है, जो इस क्षेत्र के एक बहुत बड़े विशेषज्ञ माने जाते थे। उनका अनुमान है कि अब तक पूरी दुनिया में खुदाई के दौरान लगभग 5 लाख क्यूनिफॉर्म लिपियां मिल चुकी हैं।
5 लाख? और इनमें से दुनिया के सामने अनुवाद के साथ कितनी आई हैं? केवल 10%।
सिर्फ 10%?
जी हाँ, मारी नाम के प्राचीन शहर में 25,000 ऐतिहासिक दस्तावेज मिले थे, जिनमें से दशकों बाद भी सिर्फ 2800 ही अब तक छप पाए हैं। बाकी सब बस म्यूजियम के तहखानों में बंद है, किसी विद्वान के इंतजार में।
इस पूरी जटिल स्थिति को समझाने के लिए एडविन यामाउची ने एक बहुत ही शानदार और तार्किक सिद्धांत दिया है, सर्कल ऑफ एविडेंस या सबूतों का चक्र।
हाँ, ये सिद्धांत बहुत कुछ साफ कर देता है।
इसे ऐसे समझा जा सकता है कि हमारे पास इतिहास को जानने के 3 अलग अलग वृत्त या घेरे हैं। पहला घेरा है साहित्यिक दस्तावेज, जैसे कि बाइबल या कोई और प्राचीन ग्रंथ। दूसरा घेरा है भौतिक अवशेष, यानी जमीन से निकली इमारतें, मूर्तियां या बर्तन। और तीसरा घेरा है साहित्यिक अवशेष, यानी खुदाई में मिले अन्य समकालीन पत्र, व्यापारिक रिकॉर्ड या कानूनी दस्तावेज।
बिल्कुल, और मजेदार बात यह है कि ये तीनों घेरे एक दूसरे को बहुत ही कम काटते हैं, यानी ओवरलैप करते हैं।
मतलब तीनों का एक साथ मिलना दुर्लभ है।
बहुत दुर्लभ, ऐसा बहुत ही कम होता है कि किसी एक विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का जिक्र किताब में भी हो, उसकी इमारत भी जमीन से मिल जाए और उसी घटना से जुड़ा कोई अन्य व्यापारिक या कानूनी दस्तावेज भी मिल जाए। इन तीनों का एक साथ एक ही समय पर मिलना लगभग नामुमकिन के बराबर है।
तो इस सब का आखिर मतलब क्या है?
इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर किसी प्राचीन ग्रंथ की कोई बात किसी इमारत या खुदाई में साबित ना हो पाए, तो हम तुरंत ये फतवा नहीं दे सकते कि वो बात झूठी है।
एकदम सही।
इसका एक क्लासिक उदाहरण डैनियल की किताब में डेरियस द मीड नाम के एक शासक का जिक्र है। लंबे समय तक आलोचकों ने कहा कि चूंकि खुदाई में या बाहरी दस्तावेजों में इस राजा का कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए ये राजा कभी था ही नहीं।
हाँ, और ये मान लिया गया कि किताब का ये हिस्सा पूरी तरह से ऐतिहासिक रूप से गलत है।
लेकिन इतिहास में ऐसे कई दावे समय के साथ गलत साबित हुए हैं।
जैसे पॉन्टियस पिलेट का मामला।
बिल्कुल, पॉन्टियस पाइलेट, जो रोमन इतिहास और न्यू टेस्टामेंट का एक बहुत बड़ा और क्रूर नाम है, उसका कोई भी भौतिक या शिलालेखीय सबूत 1961 तक दुनिया में किसी के पास नहीं था।
1961 तक? मतलब इतने लंबे समय तक उसका कोई सबूत नहीं था?
हाँ, अगर हम केवल खुदाई के प्रमाणों पर निर्भर रहते तो 1961 से पहले हम यही मानते कि पॉन्टियस पाइलेट नाम का कोई इंसान इस धरती पर था ही नहीं। लेकिन फिर केसरिया में एक पत्थर मिला जिस पर उसका नाम खुदा था, और रातों रात इतिहास की किताबों को खुद को सही करना पड़ा।
चलिए अब इस पूरी चर्चा के सबसे दिलचस्प और विचारणीय मोड़ पर आते हैं। हमने ये मान लिया कि बहुत मुश्किल से हमें जमीन के नीचे से कोई इमारत मिल भी गई और हम उसके सामने खड़े हैं, लेकिन क्या वो पत्थर की इमारत खुद बोलकर बताती है कि नमस्ते, मैं राजा सोलोमन का तबेला हूँ? जाहिर है नहीं।
अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो बिना लिखे हुए सुरागों का मतलब निकालना या उनकी व्याख्या करना हमेशा ही अनिश्चित और व्यक्तिपरक होता है।
मतलब सब कुछ इंटरप्रिटेशन पर निर्भर है।
बिल्कुल, ऐतिहासिक फैसले और हकीकत जमीन से खुद बाहर निकलकर नहीं आते, उन्हें पुरातत्वविदों को अपने नजरिए, अनुभव, समकालीन संदर्भ और तर्क से गढ़ना पड़ता है। और जहां इंसान का नजरिया और दिमाग शामिल हो जाए, वहां कभी कभी बहुत बड़ा धोखा भी हो सकता है।
इसका सबसे मशहूर और दिलचस्प उदाहरण है राजा सोलोमन के तबेले। बाइबल में फर्स्ट किंग्स में ये जिक्र है कि राजा सोलोमन ने रथों और घोड़ों के लिए विशेष शहर और जगहें बसाई थी।
हाँ, और फिर क्या हुआ?
हुआ यूं कि मिगिडो की खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को पत्थरों के बड़े बड़े खंभे मिले जिनमें आर पार छेद बने हुए थे। खुदाई के डायरेक्टर ने तुरंत अपना दिमाग दौड़ाया और संदर्भ जोड़ते हुए निष्कर्ष निकाल दिया कि ये तो तबेले हैं और खंभों के ये बड़े छेद घोड़ों की लगाम बांधने के लिए हैं।
और ये बात इतनी तेजी से फैली कि रातों रात हर पुरातात्विक किताब, न्यूज़पेपर और विश्वकोश में एक स्थापित तथ्य के रूप में छप गई। सबको लगा कि बाइबल की बात जमीन पर सच साबित हो गई है।
ये कई दशकों तक एक निर्विवाद तथ्य माना जाता रहा, लेकिन फिर 1970 में जेम्स प्रिचार्ड नाम के एक विशेषज्ञ ने इस पूरे सबूत और निष्कर्ष को दोबारा परखा।
और उनका निष्कर्ष क्या था?
उनका निष्कर्ष ये था कि वे खंभे सोलोमन के समय के थे ही नहीं, वे उसके काफी बाद के राजा अहाब के समय के थे। और सबसे बड़ी बात, वो कोई तबेले नहीं थे, वे या तो सैनिकों के बैरक थे या फिर अनाज रखने के विशाल गोदाम।
अरे बाप रे, तो फिर उन छेदों का क्या जो घोड़ों के लिए समझे गए थे?
जेम्स प्रिचार्ड ने वास्तुकला का तर्क दिया। अगर आप किसी भारी भरकम जंगी घोड़े को एक पत्थर के खंभे से बांधेंगे और घोड़ा घबराकर जोर लगाएगा, तो वो पूरा खंभा और उसके साथ इमारत की छत नीचे गिर सकती है।
ये तो कॉमन सेंस की बात है।
बिल्कुल, वे छेद घोड़ों को बांधने के लिए नहीं बल्कि इमारत की भारी छत को सहारा देने वाली आड़ी लकड़ियों को फंसाने के लिए बनाए गए थे। एक झटके में दशकों पुरानी थ्योरी पूरी तरह से पलट गई।
ऐसा ही एक और चर्चित मामला सोलोमन की तांबे की खदानों का था। 1930 के दशक में नेल्सन ग्लुएक ने एजियन गेबर इलाके में तांबे की भट्टियां खोजी। उन्होंने तुरंत इसे सोलोमन की नौसेना और उनके विशाल व्यापार से जोड़ दिया।
फिर से वही जल्दबाजी।
हाँ, लेकिन सालों बाद जब तकनीक बेहतर हुई और उस सबूत का पुनर्मूल्यांकन हुआ, तो पता चला कि ये निष्कर्ष भी महज एक जल्दबाजी और इच्छा आधारित सोच का नतीजा था।
जेम्स प्रिचर्ड ने इस पूरी दुविधा को समेटते हुए बहुत ही गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था, ऐतिहासिक फैसले जमीन से खुद ब खुद बाहर नहीं निकलते।
बिल्कुल सही। पुरातत्वविदों को वहां मिली हर एक टूटी हुई चीज को अपने आसपास के विस्तृत संदर्भ से जोड़ना पड़ता है। उन्हें अपनी राय, कॉमन सेंस और तार्किक क्षमता का इस्तेमाल करना पड़ता है।
और ये एक शाश्वत सत्य है कि जहां इंसान की राय शामिल हो जाए, वहां हमेशा बदलाव और गलती की गुंजाइश बनी रहती है।
ये पूरी प्रक्रिया हमें एक बहुत ही अहम सबक देती है। हमें कभी भी विज्ञान या पुरातत्व में एकदम पक्के और निर्विवाद सत्य का दावा करने से बचना चाहिए। विज्ञान और पुरातत्व हमेशा खुद को सुधारने की एक निरंतर प्रक्रिया में रहते हैं।
जो चीज आज अकाट्य सत्य मानी जा रही है, हो सकता है कल किसी नई जगह पर हुई नई खुदाई से बदल जाए,
या फिर किसी म्यूजियम के तहखाने से निकले किसी नए दस्तावेज के कारण पूरी तरह से पलट जाए।
तो अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा के धागों को एक साथ समेटें, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, पुरातत्व विज्ञान हमारे लिए किसी अनमोल खजाने से कम नहीं है। यह वो रोशनी है जो हमें हमारे अतीत, हमारी जड़ों और प्राचीन इतिहास के बहुत करीब ले जाती है।
हाँ, इसके बिना इतिहास का पन्ना कोरा ही रहता और हम सिर्फ कल्पनाओं के सहारे जी रहे होते।
लेकिन साथ ही इसे अंतिम, संपूर्ण और अचूक सत्य मान लेना एक बहुत बड़ी वैचारिक भूल होगी। जमीन से निकले मुट्ठी भर टुकड़ों और इंसानी दिमाग की व्यक्तिपरक व्याख्या कभी भी 100% फुल प्रूफ नहीं हो सकती।
बिल्कुल नहीं। टुकड़ों में बटा हुआ डेटा कभी भी पूरी कहानी नहीं सुना सकता। हमें हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि हम केवल वही देख रहे हैं जो समय की मार से बच गया है, न कि वो सब कुछ जो कभी वहां असल में मौजूद था।
और ये बात केवल प्राचीन इतिहास के लिए नहीं बल्कि आज के दौर में भी बहुत मायने रखती है। ये सोचने वाली बात है कि आज हम सूचनाओं के भारी शोरगुल वाले युग में जी रहे हैं, जिसे इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कहा जाता है। हर दिन हमें इंटरनेट पर, न्यूज फीड्स में अनगिनत फैक्ट्स, रिसर्च और प्रमाण परोसे जाते हैं, जिनके साथ दावा किया जाता है कि विज्ञान ने ये साबित कर दिया है।
हाँ, लेकिन जो सबक हमने मेगिडो के तथाकथित तबेलों या हाजोड़ के बर्तनों से सीखा, वही सबक हमें आज की सूचनाओं पर भी लागू करना चाहिए। किसी भी जानकारी को अंतिम सत्य मानने से पहले क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है,
जिसे मेरे सामने पेश किया जा रहा है।
संदर्भ के बिना कोई भी डेटा, कोई भी आंकड़ा या तथ्य हमें बिल्कुल गलत दिशा में ले जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे छत को सहारा देने वाले खंभों के छेदों को घोड़ों की लगाम बांधने की जगह समझ लिया गया था।
यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मेरा मतलब है, जरा इस बात पर गौर किया जाए, आज से कई हजारों साल बाद, जब हमारी ये आधुनिक दुनिया, हमारी ये तेज तर्रार सभ्यता मौसम या समय की मार से मिट्टी की गहरी परतों में दफन हो चुकी होगी।
हाँ, और भविष्य का कोई अनजान पुरातत्वविद अपने किसी बेहद आधुनिक उपकरण के साथ खुदाई करते हुए हमारे किसी विशाल डेटा सेंटर का ढांचा खोज निकालेगा।
वहाँ कोई बिजली नहीं होगी, कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा, उसे सिर्फ धातु के बड़े बड़े जंग लगे बक्से और तारों का एक अजीबोगरीब जंजाल मिलेगा।
या फिर शायद उसे मिट्टी में दबा हुआ बिना बैटरी वाला कोई टूटा हुआ चौकोर शीशे का टुकड़ा यानी एक स्मार्टफोन मिल जाए।
तो वो हमारे आज के जीवन, हमारे समाज और हमारी सोच के बारे में क्या अजीबोगरीब अंदाजा लगाएगा? क्या वो उस सर्वर रूम या डेटा सेंटर को हमारा कोई पवित्र मंदिर मान लेगा, जहां हम सिलिकॉन के देवताओं की पूजा करते थे और तारों के जरिए उन्हें बलि चढ़ाते थे?
ये सच में सोचने पे मजबूर करता है कि हम आज अपने अतीत को किस चश्मे से देखते हैं और आने वाला भविष्य हमें कैसे देखेगा।
बिल्कुल, हमारी ये चर्चा जो एक बिखरे हुए प्राचीन क्राइम सीन से शुरू हुई थी, यहीं आकर एक गहरा वैचारिक सवाल छोड़ जाती है, क्या हम कभी भी किसी भी दौर में इतिहास की पूरी सच्चाई जान पाएंगे?